आयुब आयुब अध्याय एक। आज हम बाइबल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक आयुब का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। पुराने नियम में आयुब की पुस्तक का अध्ययन हमारे लिए एक अनूठा अनुभव होगा। जैसा कि आपको पता है, पुराना नियम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम पांच पुस्तकों को पंच ग्रंथ कहते हैं, जो नियमों एवं व्यवस्था से संबंधित है। दूसरे बाकी पुस्तकों में इसराइल राष्ट्र का इतिहास, जो मिस्र से निर्गमन और कनान देश में एक राष्ट्र के रूप में बस जाने से संबंधित है। उनके इतिहास में बाबुल की बंदवाई से अपने देश में पुनः लौट आने तक का विवरण दिया गया है। ये इतिहास 400 ईसा पूर्व तक का विवरण हमें देता है। जिस भाग के अध्ययन में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वो पुराने नियम का तीसरा भाग है, जिसे कविताएं कहते हैं। इन पुस्तकों में आयुब, भजन संहिता, नीति वचन, सभा उपदेशक और श्रेष्ठ गीत की पुस्तकें शामिल हैं। ये इब्रानी भाषा की कविताएं हैं। इब्रानी भाषा की कविताएं अन्य भाषाओं की कविताओं से भिन्न होती है, क्योंकि इनमें लय नहीं होती, परंतु समानांतर विचार होते हैं। उनका साहित्य एवं कविताओं में ना तो शब्दों का तालमेल में होता है और ना लय में होती है, परंतु विचारों में होती है। उनके समानांतर विचार ही उनकी कविताओं की लय होते हैं। उदाहरण के लिए, धर्मी जन का मार्ग और दुष्ट का मार्ग। धर्मी फूले फलेंगे परंतु दुष्ट का नाश होगा। इस प्रकार आप देखते हैं विचार एक दूसरे से विपरीत होते हैं। दूसरी ओर आप ये भी देखेंगे कि विचार परस्पर समानांतर होते हैं। जैसे यहोवा का मार्ग उचित है, यहोवा का मार्ग सच्चाई है, सत्य है, यहोवा का मार्ग धार्मिकता है। इस प्रकार विचार परस्पर समानांतर भी होते हैं। कविताओं के संग्रह में आयुब की पुस्तक प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक को उत्पत्ति से भी पुराना माना जाता है। यद्यपि उत्पत्ति की पुस्तक आयुब से पूर्व के इतिहास का उल्लेख करती है, तथापि उत्पत्ति की पुस्तक में आयुब नाम आया है और निस्संदेह वो व्यक्ति यही आयुब है। इसका अर्थ ये हुआ कि आयुब इब्राहिम का समकालीन था। नूह की पीढ़ी से केवल दो पीढ़ी बाद। इस प्रकार आयुब की पुस्तक जो सबसे पुरानी है, इसमें प्राचीनतम मनुष्यों के विचार है। ये विचार उस युग के है जब मनुष्य ने लिखना सीखा था। हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य आरंभ ही से एक सा है। यद्यपि आज हमारी संस्कृतियां बदल चुकी है, समय बदल चुका है, परंतु वे समस्याएं जो आयुब की थी, आज भी हमारे सामने ज्यों की त्यों खड़ी है। जिन आवश्यकताओं का वर्णन आयुब की पुस्तक में किया है, वे आज भी मनुष्य की आवश्यकताएं बनी हुई है। आयुब की पुस्तक में हमें एक ऐसा व्यक्ति का चरित्र देखने को मिलता है, जो जीवन में इतना अधिक दुर्बल हो गया था कि उसकी देह में केवल जान शेष रह गई थी। संभवतः मानवीय इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ होगा जो आयुब के समान दुर्दशा का शिकार हो। आयुब का जीवन नाम मात्र का जीवन रह गया था। जीवन की जो मौलिक आवश्यकताएं होती है, वे भी आयुब से छीन ली गई थी। उसका परिवार, उसकी संपदा, उसके मित्र, उसका स्वास्थ्य आदि सब कुछ खो गया था। वो अपने जीवन के मूल्य के बोध को भी खो चुका था। वो अपने जन्म के दिन को कोसने लगा और मृत्यु के लिए रोने लगा। जब आप सब कुछ खो देते हैं, तब मनुष्य की लालसाएं उजागर होती हैं और उसकी तलाश का सिलसिला शुरू होता है। हम आज क्या खाएंगे? हम कल कहां छुट्टी बिताएंगे? आदि आपकी चिंता के विषय नहीं रह जाते हैं। हम अपने मस्तिष्क को व्यर्थ ही अनेक चिंताओं से भर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अनेक मित्र हैं और हमारी रुचियां भी अनेक होती हैं। ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य इन व्यर्थ की बातों में अपना पूरा जीवन खत्म कर देता है। इन अनावश्यक बातों में पूरा जीवन नाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के सामने प्रश्न ये नहीं उठता कि हम क्या खाएंगे या क्या हमारे खाने के लिए उचित होगा, परंतु ये कि हम खाने में क्या पसंद करेंगे। जब ऐसा ना हो तो आप संबंध विच्छेद के बारे में सोचते हैं। आह, कैसी त्रासदी! मनुष्य छोटी छोटी बातों के पीछे लग जाता है। ये विषय आपके अलगाव का कारण भी बन जाता है और जीवन के वास्तविक मूल्यों तक नहीं पहुंच पाता। आयुब के साथ तो हालात ये थे कि बस उसमें जान ही बाकी रह गई थी, उसका सब कुछ उजड़ गया था। वो कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है, उसकी पुकार क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है? यहां जो दिखाया गया है वो मनुष्य की तथा जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। इस प्रकार आयुब की पुस्तक हमारे लिए रोचक पुस्तक बन जाती है, क्योंकि हम उसमें आयुब की उस पुकार को सुनते हैं जो जीवन के गहन मूल्यों से संबंधित है। आयुब की कहानी एक रोचक कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो यशया की पुस्तक में परमेश्वर के वचन की पुष्टि करती है कि परमेश्वर के भेद हम नहीं जान सकते। परमेश्वर ने यशया के मुख से कहा, यशया 55 अध्याय 8 पद, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। मैं ये स्वीकार करूंगा कि मैं परमेश्वर के बारे में नहीं के बराबर ही जानता हूं। यही कारण है कि मैं उसकी उपासना करता हूं। यदि मैं इस बारे में सब कुछ समझ लूं तो वो मेरे बराबर हो जाएगा, तब मैं उसकी उपासना क्यों करूंगा? क्योंकि वो इतना महान है, बुद्धि ज्ञान और समझ में वो अपरंपार है, इसलिए मैं भय और श्रद्धा से पूर्ण होकर उसकी उपासना करता हूं। वो मेरी समझ के अनुसार काम नहीं करता है और ना ही वो मुझे समझाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं उसे कहता हूं कि वो मुझे समझाए, परंतु वो ध्यान भी नहीं देता है। वो तो मेरी आपत्ति करने के बाद भी अपना काम करता है, परंतु मैं तो उसके कामों को सराहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले से जान लिया है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं तो उस श्रेणी में आता हूं जिसका वर्णन शेक्सपियर ने किया, मनुष्य बेचारा मनुष्य, अपने सर्वोत्तम ज्ञान में भी कैसा अज्ञानी है। मैं भी ये देखता हूं कि मेरा सर्वोत्तम ज्ञान भी अज्ञान ही है। इस कारण मैं अपना जीवन और अपनी इच्छा परमेश्वर और उसके ज्ञान को समर्पित कर देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, प्रभु मैं तो समझ नहीं पाता कि तू क्या कर रहा है। मैं पसंद तो नहीं करता कि तू क्या कर रहा है, परंतु ये अवश्य जानता हूं कि जो तू कर रहा है वो सबसे अच्छा ही है, अतः करता रहे। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। पुस्तक के आरंभ में आयुब की पृष्ठभूमि दी गई है। आयुब अध्याय 1 पद 1, उस देश में आयुब नाम एक पुरुष था। जहां कहीं भी वो देश रहा हो, आयुब के बारे में कहा गया है कि पद 1 में आगे लिखा है, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। आयुब एक अच्छा व्यक्ति था। वो परमेश्वर से प्रेम रखता, उसका भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अध्याय 1 पद 2 और 3, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदियां और बहुत सी दास दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वो सबसे बड़ा था। आयुब एक अच्छा मनुष्य, वो एक धनवान और ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर से प्रेम रखता था और बुराई से दूर रहता था। अध्याय 1:4। और उसके बेटे, ऐसा लगता है कि उसके पुत्र दावतों के बड़े शौकीन थे। वो अपने पुत्रों की चिंता में रोज बलिदान चढ़ाता और परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर यदि उन्होंने अपनी दावतों में कोई ऐसी बात कह दी हो जो तेरे विरुद्ध है, ये तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उन्हें क्षमा करना प्रभु। वो अपनी संतानों के लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता था। ये आयुब की पृष्ठभूमि थी। अब हम आयुब से हटकर स्वर्गिक दृश्य में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गदूत उपस्थित हो रहे हैं। उन स्वर्गदूतों के साथ शैतान भी वहां पहुंचता है। ऐसा लगता है कि पतन के बाद भी शैतान परमेश्वर के सामने जाता रहता है। परमेश्वर उसे अपने सामने आने की अनुमति ही क्यों देता है? मैं आपके सामने स्वीकार कर चुका हूं कि मैं परमेश्वर के बारे में सब कुछ नहीं जानता, अतः मैं नहीं जानता कि वो शैतान को अपने सामने आने की अनुमति क्यों देता है। बाइबल कहती है कि वो मनुष्य पर दोष लगाने वाला है और वो परमेश्वर के सामने दिन रात उन पर दोष लगाता रहता है। आयुब के विषय इस वचन की पुष्टि करता है। जब परमेश्वर आयुब की प्रशंसा करता है तब वो तुरंत दोष लगाता है। परमेश्वर के सामने जब वो आया तब परमेश्वर ने उसे पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और ढोलते ढोलते आया हूं। परमेश्वर ने उससे कहा, अध्याय 1:8, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? परमेश्वर गर्व से कह रहा था कि पृथ्वी पर उसका भय मानने वाला एक मनुष्य है जो बुराई से दूर रहता है। ये मेरा दिलचस्प शब्द है, ध्यान दिया है। इसका मूल शब्द सेनाओं में प्रयोग किया जाता था, जिसका तात्पर्य होता था कि किसी स्थान पर आक्रमण करने से पूर्व उसका सर्वेक्षण करना, कि उसके विनाश हेतु अनुकूल रणनीति तैयार की जाए। उनके नगर द्वारों को खोलने और बंद करने की विधि, लोगों के आवागमन की रीति की नगर का कौन सा द्वार आक्रमण के लिए आसान है, इब्रानी के उस शब्द का अर्थ यही है। अतः परमेश्वर शैतान से पूछता है कि तूने आयुब का सर्वेक्षण करके देख लिया है कि तू उस पर कहां से आक्रमण करेगा? वो मेरा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने डरते हुए कहा, हां ध्यान दिया है। शैतान ने केवल ध्यान ही नहीं दिया परंतु आयुब के बारे में अपना दृष्टिकोण बना लिया था। उसने कहा, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की ओर जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, मैं तो उसके निकट पहुंच ही नहीं सकता हूं। परमेश्वर अपनी संतान के चारों ओर बाड़ा बांध देता है। भजन संहिता 91:11-12 पर, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये परमेश्वर का बाड़ा है जो हमारे चारों ओर है। शैतान इसी के लिए शिकायत कर रहा है। अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसको छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। उसकी संपत्ति देश भर में फैल चुकी है। परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। अध्याय 1:13-18। एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाक मधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाक मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोने को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। क्षण भर में उसकी संपदा, धन, संतान आदि सब नाश हो गए। आप क्या करेंगे? आयुब वहीं मिट्टी में मुंह के बल भूमि पर गिरा और परमेश्वर को धन्य कहा। अध्याय 1:21-22। मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मैंने बहुत लोगों को परमेश्वर पर मूर्खता भरे दोष लगाते हुए सुना है। वे परमेश्वर को कोसते तो नहीं है, परंतु वे उस पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है, वो मुझसे प्रेम नहीं रखता है। कभी कभी हमारी परिस्थितियां हमें परमेश्वर पर मूर्खता भरे दोष लगाने पर मजबूर कर देती है। आयुब ने ऐसा नहीं किया। ये उसकी प्रथम परीक्षा थी और वो सफल रहा।